आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है नियति और आज की हमारी इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश किताब जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। और इस क्लास में हम शुरू करते हैं सबसे पहले लेसन के साथ। हम आज की शुरुआत करेंगे, लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि हम हाउ वी विल गो अबाउट विद दिस एंटायर टॉपिक या फिर पूरे बुक को हम किस तरह से पढ़ेंगे। जब भी हमारा न्यू टॉपिक या फिर न्यू लेसन जब हम शुरू करेंगे, हम लोग पहले पूरा का पूरा चैप्टर रीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें से जो जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो मैं आपको समझाऊंगी। इससे क्या होगा, आपको ओवरऑल आइडिया मिलेगी कि क्या एग्जैक्टली हम पढ़ रहे हैं या फिर कंटेक्स्ट क्या है पूरी चीज का। उसके बाद मैं आपको स्टेंजा बाय स्टेंजा या फिर आप ये कह के मान लो मैं आपको पैरा बाय पैरा इसका मतलब समझाऊंगी। ओके, तो शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड। सो बिफोर यू रीड, ये वाला एक सेक्शन दिया गया है वो हम रीड करेंगे पहले। दे से दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lancho's letter reach to God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. तो यहाँ पे नीचे कुछ activity दी गई है आपको, यानी कि पूरा पोस्ट ऑफिस कैसे वर्क करता है, यानी मनी ऑर्डर कैसी होती है वगैरह वगैरह, सो दैट यू कैन सॉर्ट इट आउट फॉर योरसेल्फ। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली इस लेसन के साथ शुरू करेंगे, पहले रीड करते हैं। ओके, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house, until the woman called them all. Come for dinner. It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. With satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in curtain of rain. But suddenly a strong wind began to flow and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. Not a leaf remained on trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lancho's soul filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year, we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We'll all go hungry this year. यहाँ पे बच्चों फिर कुछ सवाल दिए गए हैं विच हम बाद में इसके ऊपर फोकस करेंगे, पहले हम लेसन रीड करेंगे। ओके, बट इन द हार्ट्स ऑफ हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज हंगर। दैट इज वॉट दे से, No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in its one conscience. Lencho was on an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, fat, amiable fellow, also broke out laughing. But almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But stuck to his resolution, he asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. So, he was able to send the farmer only little more than half. He put his money in the envelope addressed to Lencho, and with it letter containing only single word as a signature, God. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was a postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made mistake, nor would he have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write. With much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make the express of his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he leaked and then affixed to the envelope with a blow on his fist. That moment, the letter fell into the mailbox. The postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it through the mailbox, because the post office employees are a bunch of crooks." Lencho. तो बच्चों, ये जो हमारा लेसन है अ लेटर टू गॉड, इसकी मैं आपको ओवरऑल समरी बताती हूँ, उसके बाद वर्ड टू वर्ड या फिर आप कहो पैरा बाय पैरा इसका मतलब भी आपको समझाऊंगी. ओके, सो लेटर टू गॉड, ये जो लेसन है आपका, ये जो ऐसे टाइप है, ये लिखा है एक लेखक ने. वो कहते हैं कि एक फार्मर होता है बेसिकली, जो कि बहुत ही जिसका ट्रस्ट होता है, फेथ होता है भगवान पे. तो एक बार क्या होता है कि उसका क्रॉप होता है मेज, यानी कि उसका कॉर्न, यानी कि आप कह सकते हो मक्का जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, उसकी खेती होती है उस इंसान के पास, जिसका नाम होता है लेंचो. और जब वो अपनी खेती, जब उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी खत्म हो जाती है, किस वजह से, कि आसमान से स्नोफॉल हो जाता है, यानी कि हेल स्ट्रॉम हो जाता है, बहुत बड़े बड़े ड्रॉप्स, या फिर आप कह सकते हो स्नोफॉल, स्नो के बड़े बड़े ड्रॉप्स गिर जाते हैं उसकी खेत पे, और इस वजह से उसका खेत पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है. पर लेंचो हिम्मत नहीं हारता. उसको पता होता है कि अगर उसकी ये खेती, अगर उसकी मतलब अगर खत्म हो जाती है, पूरा का पूरा उसने क्रॉप किया गया हुआ, तो भी उसका एक फेथ उसका था, एक उसका भरोसा था, और वो था भगवान पे. बहुत ही मतलब आंखें बंद कर देने वाला भरोसा, मतलब आप कहते हो ब्लाइंड ट्रस्ट जिसको आप कह सकते हो, वैसा वाला भरोसा उसको भगवान पे था। और इसी भरोसे के चलते हुए लेंचो खत लिखता है भगवान को, एक लेटर लिख देता है। वो लेटर कहाँ जाता है, कौन पढ़ता है, और लेंचो की मदद कैसी होती है, ये पूरा एक्सप्लेन किया है, किया गया है इस हमारे पर्टिकुलर लेसन में, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। तो बहुत ही इजी है, आपने भी अभी तक जान लिया होगा जब हमने ये पूरा लेसन पढ़ा तब, कि लेंचो का जो लेटर है वो हाथ में आ जाता है उन पोस्ट मास्टर के हाथ में आ जाता है, और पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि अरे कितना भरोसा है इस इंसान को भगवान पे, तो क्यों ना हम ही उसको मदद कर दे। बट 100 पीजोस, यानी कि आप मान के चलिए आज के जमाने में हम कह सकते हैं कि 10,000 कम से कम, तो इतने इतना सारा जो पैसा है वो लेंचो के उस पोस्ट मास्टर के पास तो नहीं होता। तो इस वजह से वो पोस्ट मास्टर क्या करता है, अपने बाकी एम्प्लॉयज को या फिर अपने बाकी जो उसके दोस्त होते हैं उनको भी कहता है कि वो डोनेट करें, और वो भी हंसी हंसी खुशी डोनेट कर लेते हैं लेंचो के लिए। पर होता क्या है कि वो पूरे 100 पीजोस तो वो इकट्ठा नहीं कर पाते, वो बस 70 पीजोस ही इकट्ठा कर पाते हैं। तो इस वजह से लेंचो को जब वो वापस से मिल जाता है तो वो क्या करता है, क्या कहता है भगवान को, वापस से वो दोबारा लेटर लिखता है और कहता है कि भगवान आप पोस्ट के थ्रू आप मुझे पैसे मत भेजो, ये वाले जो पोस्ट मास्टर में मतलब पोस्ट में जो लोग हैं वो उतने ज्यादा ऑनेस्ट नहीं है, उन्होंने पैसे मुझे पूरे के पूरे नहीं दिए। पर एक हमें गौर करने वाली बात ये है बच्चों यहाँ पे, कि जो पोस्ट मास्टर है वो ऐसे ही उसको पैसे नहीं देता। अगर लेंचो ने वहां पे लिखा होता कि मुझे मदद के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो शायद ये होता कि पोस्ट मास्टर को पैसे नहीं देता। पर लेंचो क्या लिखता है, लेंचो लिखता है कि मुझे दोबारा से जो पूरी खेती है वो करनी है, मुझे मुफ्त में पैसे नहीं चाहिए, जो पैसे आप भगवान मुझे भेजोगे उससे मैं दोबारा खेती करूंगा, और दोबारा कॉर्न उगाऊंगा, दोबारा मक्का उगाऊंगा, और उसके बाद जो हार्ड वर्क करने के बाद जो मुझे अपना जो क्रॉप का जो फल मिलेगा वो मुझे चाहिए, मुझे मुफ्त के पैसे नहीं चाहिए। इतना ही लिखता है लेंचो अपने लेटर में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वर्ड टू वर्ड जानने की कोशिश करेंगे, मतलब स्टेंजा बाय स्टेंजा, की पूरा समरी क्या है इस हमारे लेटर टू गॉड लेसन की। वंस वी आर डन विथ लर्निंग द समरी, हम क्या करेंगे, उसके नीचे जो सवाल है ना बच्चों, क्वेश्चंस, उनके जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो लिखा है आपका थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट एंड थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, ऑल्सो आपके सवाल है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है वो भी हम लोग वो भी उसके भी आंसर्स हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके तो शुरू करते हैं समरी जानने के लिए। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। मतलब कि यहाँ पे लेंचो के घर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है और लेंचो के खेत का भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कि बस एक घर होता है बहुत दूर एक वैली में जहाँ पे लेंचो का घर होता है ना, और वहां पे बहुत बड़ा उसका खेत भी होता है जहाँ जिसमें मक्के लगे होते हैं। अब लेंचो क्या करता है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा डिस्क्रिप्शन दिया है लेंचो के सराउंडिंग का, कि अगर दूर से अगर देखा जाए बहुत ही बड़ी हाइट से तो दिख जाता है कि एक अच्छी एक रिवर है, मतलब नदी है जो फ्लो हो रही है, और उसके बगल में मक्के का खेत है, और अच्छे से मक्का वहां पे मतलब बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो गया है मक्का, लेंचो के हार्डवर्क के बदौलत, लेंचो और उसके बीवी के हार्डवर्क के बदौलत। और द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, यानी कि बस अभी उसको बारिश चाहिए होती है उस पर्टिकुलर क्रॉप को, मेज मक्के को, उसके बाद और अच्छे से वो फील्ड मतलब और अच्छे से वो जो हमारा खेत है वो फूलने लगेगा। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरे दिन में लेंचो कुछ नहीं कर रहा होता, लेंचो बस आसमान की तरफ देखता है नॉर्थ ईस्ट साइड में, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो साइड है उस साइड में वो देखता रहता है कि कब बारिश आएगी और कब मेरा जो खेत है वो और ज्यादा उसको पानी मिलके वो और ज्यादा क्रॉप्स दे देगा। यहाँ पे एक डिफिकल्ट वर्ड है क्रेस्ट, यानी कि टॉप ऑफ द हिल, आपके राइट साइड में लिखा गया है ना CREST, क्रेस्ट यानी कि टॉप ऑफ द हिल। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वॉटर वुमेन, ये लाइन वो अपने वाइफ को कहता है, अपनी पत्नी को कहता है कि अभी हमें बहुत ज्यादा बारिश मिलने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all, come for dinner. मतलब कि वो अपने जो पत्नी है उसको कहता है कि हाँ अभी हमें बारिश अभी आएगी. तो जो औरत होती है बीवी उनकी, तो वो जब खाना बना रही होती है वो रिप्लाई करती है कि हाँ अगर भगवान के मन में है तो हाँ हमें बारिश बिल्कुल मिलेंगी. तो लेंचो के बच्चे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे. तो जो बड़े बच्चे होते हैं, बड़े लड़के, तो वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं खेतों में, और जो छोटे होते हैं वो खेल रहे होते हैं. तभी उनकी जो माँ होती है उनको बुलाती है कि चलो खाना खाने आओ. और जब वो खाना खाने लगते हैं तब क्या होता है देखते हैं. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. The man went out for no reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "They aren't raindrops falling from the sky. They are the new coins. The big drops are 10 cent pieces, and the little ones are 5." मतलब कि क्या होता है? लेंचो खाना खा रहा होता है अपने परिवार के साथ, तभी उसको लगता है कि अभी बहुत बड़ी बारिश आने वाली है, और इसी वजह से वो बाहर चला जाता है. और वो जब देखता है बाहर, तो उसको क्या रियलाइज होता है? कि सच में बारिश आ रही होती है नॉर्थ ईस्ट साइड से ही. मतलब जिस साइड से लेंचो को लग रहा होता है कि हाँ अभी इस साइड से बारिश आएगी, उसी साइड से बारिश आ रही होती है. एयर बहुत ही ज्यादा, हवा फ्रेश होती है और ठंडी होती है. और क्योंकि लेंचो बारिश प्रेडिक्ट करता, उसको बारिश चाहिए होती है, इसीलिए उसको क्या लगता है कि वो फ्रेश, बहुत ही ज्यादा फ्रेश और मीठी है वो एयर. लेंचो बाहर जाता है ताकि वो थोड़ा सा जो बारिश है अपने ऊपर वो महसूस कर सके, और अंदर आके कहता है कि ये बारिश ही नहीं है बल्कि ये छोटे मोटे कॉइन्स है, छोटे मोटे जो है मनी हमारे ऊपर गिरने वाले है. छोटी मोटी बारिश, बस पानी की बारिश नहीं है बल्कि हमारे ऊपर पैसों की बारिश होने वाली है. जो बड़े वाले जो ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के हैं, और जो छोटे वाले ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट के हैं. सेंट यानी कि करेंसी वहां की. ओके, तो वेन सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स Draped in curtain of rain, but suddenly a strong wind began to flow, and along with the rain, very large hailstone began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. इतने में ही क्या होता है कि लेंचो तो अभी बारिश enjoy कर ही रहा होता है, पर तभी एकदम से हवा बदल जाती है, बहुत तेज हवा चलने लगती है, और तेज हवा और वो ठंडी हवा होने के कारण जो बारिश की जो बूंदे होती है ना बच्चों, पानी की जो बूंद, वो कन्वर्ट हो जाती है स्नो में. स्नो यानी कि बर्फबारी होने लगती है. बड़े जो ड्रॉप्स होते हैं वो बड़े गोले बन जाते हैं बर्फ के, और छोटे ड्रॉप्स होते हैं वो छोटे गोले बन जाते हैं. और इस प्रकार से, क्योंकि वो हमारे जो स्नोफॉल है, मतलब कि बर्फ के टुकड़े बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, इसी वजह से लेंचो का पूरा जो फील्ड है वो डिस्ट्रॉय होने जाता है. मतलब पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है उसका फील्ड. This truly did resemble new silver coins. मतलब कि वो सच में जो बड़े बड़े बर्फ के गोले होते हैं, वो लेंचो को लगता है कि हाँ यार ये तो सच में, मतलब बड़े बड़े इतने ज्यादा हैवी है कि ये कॉइन जैसी ही है. तो लेंचो के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता सीरियसनेस का, मतलब कि लेंचो का खेत वगैरह बर्बाद हो जाएगा, उनको तो पता नहीं था. तो वो बाहर जाते हैं और उस बर्फ के साथ खेलने लगते हैं. आगे देखते हैं क्या होता है. जी, यहाँ पे एक डिफिकल्ट वर्ड है, ड्रैप्ड है, DRAPED, मतलब कि कवर्ड, मतलब कि पूरा का पूरा कवर होना. ओके, तो चलते हैं अगले पैरा पे. विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन कर्टन ऑफ रेन बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. The boys exposed themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. It's really getting bad now, he exclaimed. The man, I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with the salt. लेंचो को ये बात पता चल जाती है कि जो हेल स्ट्रॉम जो हो रहे हैं, जो बर्फ की बारी हो रही है, वो अभी रुकनी चाहिए वरना उसका खेत जो है वो तबाह हो जाएगा. पर फिर भी वो बहुत ज्यादा, मतलब उसके मन में होता है कि अभी तो ये पूरा बर्फबारी रुकनी चाहिए, रुकनी चाहिए. पर ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तभी लेंचो को लगता है कि अभी तो उसका फील्ड उसके हाथ में से, मतलब उसको अभी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हाथ उसके नहीं लगेगा, उसका पूरा जो फील्ड है पूरा खेत डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही होता है, उसका पूरा फील्ड ऐसा लगता है उसके पूरे जो खेत में व्हाइट कलर का सॉल्ट यानी कि नमक जिस प्रकार से फैला होता है, वैसे ही लगता है कि उसके फील्ड में पूरा नमक फैला हुआ है। हालांकि वो नमक नहीं होता, आप जानते होंगे स्नोफॉल जो होता है, फिर बर्फ वो व्हाइट कलर की होती है, और इसी प्रकार से उसका पूरा फील्ड जो है व्हाइट बन जाता है। आगे चल देखते हैं क्या होता है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, अ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल वॉज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। मतलब कि होता क्या है, लेंचो को जब ये बात पता चलती है कि उसका पूरा जो हार्डवर्क है वो वेस्ट गया है, वो उसके पास और कोई चारा नहीं बचता, वो बहुत ज्यादा सोरो यानी कि उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे मतलब के जो फूल आ गए होते हैं, जो कि आगे जाके फिर अच्छे से बड़े वाले मक्के बनेंगे, वो सारा का सारा जो फील्ड होता है उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो अपने बच्चों से कहता है कि अ प्लेग ऑफ लॉक्टस, लॉक्टस यानी कि एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है जो कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि जो खेतों को डिस्ट्रॉय करता है। तो वो अपने बच्चों को कहता है कि अगर वो कीड़ा भी अगर रहा होता हमारी फील्ड में, तब भी वो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करता अपनी फील्ड का। तो ये कह के फिर बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। यानी कि हालांकि माना कि उनके अभी फील्ड में कुछ नहीं था, उनका पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हुआ था, फिर भी उन सारे लोगों के मन में एक होप था, एक आशा थी उनके मन में, और वो थी भगवान से मदद आने की। डोंट बी सो अपसेट, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस्ट, रिमेम्बर नो वन डाइज हंगर। यानी कि उनके घर में फिर वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि इतने भी अपसेट मत नहीं होना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि हम भूखे तो नहीं मरेंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज इन हंगर। All through the night, Lencho thought only his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of man, working like an animal in his field, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to town and place in the mail. इट वॉज नथिंग लेस देन द लेटर टू गॉड। मतलब कि यहाँ कहा गया है कि माना कि लेंचो बहुत ही ज्यादा हार्डवर्किंग था और वो एक फार्मर था, फिर भी लेंचो को पता था कि लिखते कहते कैसे हैं, पढ़ते लिखते कैसे हैं, वो लिटरेट था। तो लेंचो क्या करता है, इसलिए एक संडे वो उठता है और लेटर लिखने के लिए चला जाता है। और किसको लेटर लिखता है, वो लेटर लिखता है भगवान को, और वो लेटर वो खुद अपने हाथों से कैरी करके भगवान जो मेल बॉक्स में है वो डालना उसको चाहत, मतलब वो ये प्लान करता है कि वो उस मेल बॉक्स में डालेगा और वो लेटर फिर भगवान के पास पहुंचेगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, कंसाइंस, CONSCIENCE, कंसाइंस, मतलब कि एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मतलब कि आपका माइंड आपको बताता है कोई भी चीज सही है या फिर गलत है। चलते हैं आगे। गॉड, ही रोट, If you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorms. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. यानी कि लेंचो क्या करता है, भगवान के लिए खत लिखता है, और उस खत में वो क्या लिखता है कि भगवान मुझे पैसे चाहिए, 100 pesos चाहिए। किस लिए? बस इसलिए नहीं कि मेरा फील्ड डिस्ट्रॉय हुआ है, बट इसलिए चाहिए ताकि मैं नए क्रॉप्स उगा सकूं, और वो पैसे मैं उसी वजह से उसी के लिए भी यूज करूं, और कुछ दिन और सर्वाइव करने के लिए, कुछ दिन और जिंदा रहने के लिए, खाना मतलब खरीदने के लिए मैं जिंदा रख सकूं खुद को और अपनी फैमिली को, इस वजह से मुझे 100 पीसोस चाहिए। और वो ऐसे करके लेटर लिख के उसके उसके ऊपर स्टैंप लगा के वो जो लेटर है वो मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टेडली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। द पोस्टमास्टर, अ फैट amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commanded, "What faith! I wish I had the faith in of the man who wrote this letter, starting up correspondence with God." तो postmaster जो कहते हैं, उनके हाथ में जब ये postman जब ये letter दे देता है, जिसके ऊपर लिखा होता है a letter to God, तो पोस्टमास्टर जो है वो भी शॉक हो जाते हैं और पोस्टमैन जो है जो कि लेटर डिलीवर करते हैं वो भी शॉक होते हैं। पोस्टमास्टर वो होता है जो पूरे पोस्ट ऑफिस का हेड होता है और पोस्टमैन जो होता है वो लेटर हर जगह डिलीवर करता है। ओके, तो यहाँ पे एक डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। पीसो यानी कि PESO, मैंने कहा था आपको करेंसी होती है और ये करेंसी है लैटिन अमेरिका की। ओके, और एमिएबल का मतलब है फ्रेंडली या फिर प्लेजेंट। फ्रेंडली यानी कि बहुत ज्यादा जॉली, हंसते खेलते हुए इंसान। और करेंसी का बच्चों मतलब है जैसे कि हमारे इंडिया में रुपया है, रुपए हैं है ना, कॉइन, तो उसी प्रकार से लैटिन अमेरिका में पीसो होते हैं। तो ये कहानी है लैटिन अमेरिका की। तो जब भी ये लेटर जब ये उस पोस्टमैन को मिलता है वो भी हंसता है, पोस्टमास्टर को दिखाता है वो भी हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि अरे इतना ज्यादा फेथ है उस इंसान को भगवान पे, काश मुझे भी इतना ही फेथ होता भगवान पे। फिर वो क्या करते हैं, so in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with the idea, answer the letter, but he opened it, it was evident to answer that he would need something more than goodwill, ink and paper. जब वो लेटर खोलते हैं तब उनको ये पता चलता है कि बस उनके पास गुडविल यानी कि अच्छी अच्छा मन में कुछ अच्छा होना, तो बस उसके वजह से और इंक और पेपर लेके तो वो लेटर को रिप्लाई नहीं कर सकते। उनको क्या चाहिए, उनको 100 पीसोस चाहिए ताकि वो लंचों की मदद कर सके। वो अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली और बाकी जो एम्प्लॉयज हैं उनको कहते हैं कि आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करिएगा, तो वो लोग कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। ही पुट द मनी इन द एनवेलप एड्रेस टू लंचो एंड विथ इट लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड। मतलब कि पोस्टमास्टर क्या करते हैं, सारे पैसे इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं और वो सोचते हैं कि अभी वो लेंचो को दे देंगे, पर वो लिखते क्या है उस लेटर में, वो लिखते हैं बस गॉड, बस भगवान का नाम लिखते हैं और फिर वो रख देते हैं वहां पे। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देर वॉज अ लेटर फॉर हिम। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वेल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ मैन who had performed a good deed looked on from the office. Postmaster जो है वो office में बैठ के लेंचो को देख रहे होते हैं और postman जो है वो लेंचो के हाथ में वो letter थमा देते हैं। लेंचो वहां पे वापस से आ रहा होता है संडे को। ओके, लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो जब लेंचो पैसे गिनता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्यों, क्योंकि उसको पता होता है कि भगवान तो उसके साथ में ऐसे मतलब धोखा नहीं करेंगे और जो भी मांगा है उसने तो भगवान तो उसको देकर ही रहेंगे। पर ये जब पोस्टमास्टर देखते हैं अंदर से अपने ऑफिस से कि लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था कि भगवान के साथ भगवान की तरफ से उसको लेटर आया है या फिर भगवान की तरफ से उसको मदद मिली है, इतना ज्यादा भरोसा उसको भगवान के ऊपर होता है जिसको हम कहते हैं बाकी भाषा में फेथ। Immediately, Lencho went up to the window and asked for paper and ink. On the public writing table, he started to write. With much wrinkling on his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp with which he leaked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I had asked for, only 70 pesos reach me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mailbox. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचू. तो लेंचू क्या लिखता है उस लेटर में कि भगवान आपने तो मुझे पैसे भेजे पर वो पैसे मुझे कम थे, जो मिले मुझे वो कम थे, बस मुझे 70 वीजोस ही मिले. तो आप अगले बार क्या करिएगा, मुझे बाकी के पैसे भी भेजिएगा, मुझे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. पर भेजते वक्त एक काम करिएगा कि आप पोस्ट से मत भेजिएगा, आप मुझे किसी और प्रकार से मुझे वो पैसे भेजिएगा. क्योंकि लेंचो को डाउट होता है कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज है उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी लेंचो को भगवान ने दिए हुए पैसे देने के लिए. तो ये पूरा का पूरा लेसन है अ लेटर टू गॉड. That's all for this class, guys. Thank you so much. Bye-bye. See you in the next class.
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद.